अध्याय 15। यह व्यक्ति पापियों को स्वीकारता है। यह अध्याय लूका 15 आयत 1 से 10 पर आधारित है। जैसे ही प्रचारक और पापी मसीह के पास एकत्रित हुए, रब्बी ने अपनी नाराजगी यह कहकर व्यक्त की, यह आदमी पापियों को स्वीकारता है और कहा कि उनके साथ खाना खाता है। इस आरोप के द्वारा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मसीह पापी और नीच लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता था और उनकी दुष्टता के प्रति असंवेदनशील था। यीशु में रब्बी मसीह में निराश हो गए थे। ऐसा क्यों था कि जिसने एक चरित्र का इतना बड़ा दावा किया था, वो सभी नहीं पाया था और उनके पढ़ने के तरीके का पालन करता था? वो सभी वर्गों के बीच काम करते हुए इतनी स्पष्टता से क्यों गया? अगर वो सच्चे भविष्यवक्ता थे तो उन्होंने कहा वो उनसे बात करेगा और शास्त्री और पापियों के उदासीनता का व्यवहार करेगा। इसने समाज के इन अभिभावकों को नाराज कर दिया कि वो जिनके साथ वे लगातार झगड़े में थे, फिर भी जीवन की पवित्रता ने उन्हें जगाया और उनकी निंदा की। उन्हें इस तरह की स्पष्ट सहानुभूति में मिलना चाहिए सामाजिक बहिष्कार के साथ। उन्हें उसके तरीके मंजूर नहीं थे। वे खुद को शिक्षित, परिष्कृत और पूर्व धार्मिक रूप से मानते थे, लेकिन मसीह के उदाहरण ने उनके स्वार्थ को पूरा कर दिया। इससे उन्हें यह भी क्रोध आया कि जिन लोगों ने केवल रब्बियों के विषय में अवमानना दर्शाई है और जिन्हें सभाओं में नहीं देखा गया था, उन्हें यीशु के विषय में सोचना चाहिए और उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्री और फरीसियों ने उस शुद्ध उपस्थिति में केवल निंदा महसूस की। फिर कैसे था कि जनता और पापियों को यीशु के पास खींचता गया था? वे नहीं जानते थे कि स्पष्टीकरण उन शब्दों में निहित है जो उन्होंने एक अपमानजनक आरोप के रूप में कहा था, ये आदमी पापियों को स्वीकारता है। यीशु के पास आने वाली आत्माओं ने उनकी उपस्थिति में महसूस किया कि यहां तक कि उनके लिए पाप के गड्ढे से बच गया था। फरीसियों ने केवल उनके लिए तिरस्कार और निंदा की है, लेकिन मसीह ने उन्हें ईश्वर की संतान के रूप में अभिवादन किया। वास्तव में पिता के हौसले, लेकिन पिता के दिल से नहीं भुला, और उनके बहुत दुख और पाप ने उन्हें केवल उनकी करुणा की वस्तु बना दिया। जितना दूर वे उससे भटक गए थे, उतनी अधिक लालसा और पलायन के लिए बलिदान करने वाले को त्याग दिया। यह सब इज़राइल के शिक्षकों ने पवित्र सूची पत्र में सीखा होगा, जो कि रखवाले घातांक होना उनका गौरव था। क्या दाऊद ने नहीं लिखा, जो घातक पाप में गिर गया, मैं खोई हुई भेड़ की नाई भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ। भजन संहिता 119 आयत 176। मीका ने पापी के प्रति ईश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं किया है, यह कहते हुए कि कौन तुम्हारे समान ईश्वर है जो उस अधर्म को क्षमा करता है और अपनी विरासत के अवशेष के अपराध से गुजरता है। वह अपने कोध को हमेशा के लिए नहीं रखता, क्योंकि वह दया में प्रसन्न है। मीका 7 आयत 18। खोई हुई भेड़। मसीह ने इस समय पवित्र शास्त्र के शब्दों की यादों को याद नहीं किया, उन्होंने खुद के अनुभव के बारे में बताया। यर्दन के पूर्व में फैले चौड़े मैदानों ने झुंडों के लिए प्रचुर मात्रा में चरागाह का निर्माण किया और घाटियों के माध्यम से, लकड़ी की पहाड़ियों के माध्यम से, चरवाहों की देखभाल के लिए, एक खोई भेड़ की तलाश के लिए खोई भेड़ों को भटकना पड़ा। यीशु के बारे में कंपनी में चरवाहे थे और ऐसे पुरुष भी थे जिनके पास झुंडों और झुंडों में पैसा था और सभी उनके दृष्टांत की सराहना कर सकते थे। तुम में से कौन सा आदमी जिसके पास 100 भेड़ों है, जो एक खो गई है उसे खोजने जाएगा, जंगल में नहीं 99 को छोड़कर?
ये आत्माएं जिन पर आप कृपा करते हैं, यीशु ने कहा, वो ईश्वर की संपत्ति है। सृजन और मुक्ति द्वारा वे उनके हैं और वे उनकी दृष्टि में मूल्य हैं। जैसे कि चरवाहा अपनी भेड़ों से प्यार करता है और अगर एक भी लापता है तो वह आराम नहीं कर सकता है, इसलिए असीम रूप से उच्च डिग्री में ईश्वर हर बहिष्कृत आत्मा से प्यार करता है। पुरुष अपने प्यार के दावे से इनकार कर सकते हैं कि वे ईश्वर हैं और वह खुद को ठीक करने के लिए तरसता है। वह कहता है, एक चरवाहे के रूप में दिन में अपने झुंड को बाहर निकालता है कि वह उसकी भेड़ों में से हैं जो बिखरे हुए हैं, इसलिए क्या मैं अपनी भेड़ों को खोजूंगा और उन्हें उन सभी स्थानों से बाहर निकाल दूंगा जहां वे बादल और अंधेरे में हैं? यहेजकेल 34 आयत 12।
दृष्टांत में चरवाहा एक भेड़ की खोज करने के लिए बाहर जाता है, बहुत कम से कम जिसे गिना जा सकता है। इसलिए अगर वहां पर एक आत्मा को खो दिया होता तो मसीह उस एक आदमी के लिए मर गया होता। भेड़ जो भेड़शाला से भटक गई है वह सभी प्राणियों में से असहाय है। ये चरवाहे द्वारा मांगा जाना चाहिए क्योंकि ये अपना रास्ता नहीं खोज सकता है। तो उस आत्मा के साथ जो परमात्मा से भटक गई है वह खोई हुई भेड़ों की तरह असहाय है, और जब तक दिव्य प्रेम इस बचाव में नहीं आया था वह कभी भी ईश्वर के लिए अपना रास्ता नहीं खोज सकता था। चरवाहा जो जानता है कि उसकी एक भेड़ गायब है, झुंड पर लापरवाही से नहीं दिखता है, जिसे सुरक्षित रूप से रखा गया है, और कहता है मेरे पास 99 हैं और मुझे भटके हुए व्यक्ति की तलाश में जाने के लिए बहुत परेशानी होगी, वह वापस आएगा और मैं भेड़शाला का दरवाजा खोलूंगा और उसे अंदर आने दूंगा। नहीं, जितनी जल्दी भेड़ बकरियों भटकती हैं इससे चरवाहा उदास और बेचैन हो जाता है। वह झुंड को गिनता है और उसे याद करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एक भेड़ खो गई है तो वह सोता नहीं है। वह 99 भेड़ों को छोड़ देता है और आवारा भेड़ की तलाश में चला जाता है। रात को गहरा और अधिक अस्थाई और अधिक खोज की, वह उस खोई भेड़ को खोजने का हर संभव प्रयास करता है। उसे कितनी राहत मिलती है जब वह दूर कहीं बहुत कमजोर सी भेड़ की आवाज सुनता है। ध्वनि के बाद सबसे अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ता है। वह अपने जीवन के जोखिम पर अवक्षेप के किनारे पर जाता है। इस प्रकार वह खोजता है जबकि भेड़ की आवाज धीमी होती जाती है, जिससे पता लगता है कि भेड़ मरने पर है। अंत में उनके प्रयास को पुरस्कृत किया गया, खोई हुई भेड़ मिल गई। वह उसे झिड़कता नहीं, इसके बावजूद उसे उसके कारण काफी दुख उठाना पड़ा। वो उसे कोड़ों से मारकर नहीं ले जाता, वह उसे घर तक भी ले जाने की कोशिश नहीं करता। वह उसे कांपती हुई भेड़ को कंधे पर खुशी से उठा लेता है और उसे बड़े प्यार से बाहों में इकट्ठा करके छाती के करीब दबाता है। अपने स्वयं के दिल की गर्मी को वह जीवन दे सकता है। कृतज्ञता के साथ उनकी खोज व्यर्थ नहीं गई है, वह उसे वापस भेड़शाला में ले जाता है। ईश्वर का शुक्र है, उसने हमारी कल्पना को प्रस्तुत किया है कि बिना भेड़ के एक उदास चरवाहे की कोई तस्वीर नहीं। दृष्टांत असफलता की बात नहीं करता है, लेकिन सफलता की ओर खुशी की वसूली में करता है। यहां ईश्वरीय गारंटी है कि ईश्वर की आवारा भेड़ों में से एक की भी अनदेखी नहीं की जाती है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। हर एक जिसे फिरौती दी जाएगी, मसीह भ्रष्टाचार के गर्त से और पाप की बाधाओं से बचाएगा। आत्मा का त्याग करें, साहस करें, भले ही आपने दुष्टता की हो। ये मत सोचिए कि शायद ईश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में आने के लिए स्वयं को एक अचंभे में डाल देंगे। ईश्वर ने पहली वर्षद्ध की जब आप उसके खिलाफ विद्रोह में थे, आपकी तलाश में आगे बढ़ गया, चरवाहे के कोमल हृदय के साथ 99 को छोड़ दिया और जंगल में एक भेड़ जो खो गई उसकी खोज में चला गया। आत्मा घायल और नाश होने को तत्पर है, वह उसे अपनी बाहों में लेकर उसे सुरक्षा प्रदान करता है।
यहूदियों द्वारा सिखाया गया था, इससे पहले ईश्वर का प्यार पापी के लिए बढ़ाया जाए, उसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। उनके विचार में पश्चाताप एक कार्य है जिसके द्वारा पुरुष स्वर्ग के पक्ष में कमाते हैं, और यह सोचा गया था कि फरीसियों को विस्मय और क्रोध में उकसाया था। यह आदमी पापियों को स्वीकार करता है, उनके विचारों के अनुसार उन्हें अपने पास जाने के लिए जिसके कोई भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पश्चाताप किया था। लेकिन खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में मसीह सिखाता है कि मुक्ति ईश्वर से मांगने के माध्यम से नहीं आती है, वरन परमेश्वर की हमारे खोज में है। कोई भी ऐसा नहीं कि परमेश्वर की खोज करें, वे सब परमेश्वर से दूर चले गए हैं। रोमियो 3:11-12। बात के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो हमें अपने प्रेम को प्रकट करता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। जब भटकी हुई अंतिम रूप से घर आती है तो चरवाहे का आभार आनंदित करने वाले मधुर गीतों में अभिव्यक्ति पाता है।
वो अपने मित्रों और पड़ोसियों से कहता है, उनसे कहां मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे अपनी भेड़ मिल गई है जो खो गई थी। इसलिए जब भेड़ियों को भेड़ के बड़े चरवाहे से मिल जाता है तो स्वर्ग और पृथ्वी धन्यवाद और आनंद में एकजुट हो जाते हैं। खुशी एक पापी के लिए स्वर्ग होगी। जब वह पश्चाताप करता है 90 से अधिक और केवल 9 व्यक्तियों पर जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। मसीह ने कहा, आप फरीसी अपने आप को स्वर्ग का पसंदीदा मानते हैं, आप खुद को अपनी धार्मिकता में सुरक्षित समझते हैं। फिर यह जान ले कि अगर आपको किसी पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है तो मेरा मिशन आपके लिए नहीं है। ये गरीब आत्माएं जो अपनी गरीबी और पाप को महसूस करती है, वही लोग हैं जिनके बचाव में मैं आया हूं। स्वर्ग के स्वर्गदूत इन खोए हुए लोगों में रुचि रखते हैं जिन्हें आप घृणा करते हैं, आप शिकायत करते हैं और व्यंग करते हैं। इनमें से एक को खो दिया है जो खुद को मुझसे मिलता है, लेकिन जानते हैं कि स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और ऊपर न्यायालयों में विजय का गीत बजता है। रब्बियों का कहना था कि स्वर्ग में जब ईश्वर के खिलाफ पाप किया जाता है तब उसका विनाश होता है, लेकिन यीशु ने सिखाया कि ईश्वर को विनाश का काम एक अजीब काम है जिसमें सब स्वर्ग प्रसन्न है। उन आत्माओं में ईश्वर की अपनी छवि की बहाली है जिन्हें उसने बनाया है। जब पापी दूर तक भटकने वाले परमेश्वर के पास लौटने की कोशिश करता है तो वह आलोचना और अविश्वास का सामना करेगा। ऐसे लोग हैं जो संदेह करेंगे कि क्या उसका पश्चाताप वास्तविक है या कानाफूसी करेगा। उसके पास स्थिरता नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि वो पकड़ लेगा। ये व्यक्ति ईश्वर का कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि शैतान का काम कर रहे हैं, जो कि भाइयों का आरोप है। उनकी आलोचना के माध्यम से दुष्ट उस आत्मा को हतोत्साहित करने और उसे अभी भी आशा और ईश्वर से दूर करने की आशा करता है। पश्चाताप करने वाले पापी को खोए हुए व्यक्ति की वापसी पर स्वर्ग में आनंदित होने पर चिंतन करना चाहिए। उसे परमेश्वर के प्रेम में आराम करने दे और किसी भी मामले में फरीसियों के अपमान और संदेह से निराश न हो। रब्बियों ने मसीह के दृष्टांत को जनता और पापियों पर लागू करने के रूप में समझा, लेकिन एक व्यापक अर्थ भी है। खोई हुई भेड़ के द्वारा मसीह न केवल व्यक्तिगत पापी का प्रतिनिधित्व करता है, ये दुनिया है, लेकिन विशाल प्रभुत्व में एक परमाणु है जिस पर ईश्वर की अध्यक्षता करते हैं। फिर भी इस छोटी सी पापी दुनिया में एक खोई हुई भेड़ उसकी दृष्टि से अधिक अनमोल है। 99 से अधिक जो कि अपने रास्ते से भटकी नहीं है। मसीह स्वर्गीय अदालतों में प्यार करने वाला सेनापति अपनी उच्च संपत्ति से विचलित हो गया, जिसने एक खोई भेड़ को बचाने के लिए अपने पिता के साथ की गई महिमा को अलग रखा। इसके लिए उसने 99 की ऊंचाई पर पाप रहित दुनिया छोड़ जो उससे प्यार करता था और इस धरती पर आया, हमारे अपराधों के लिए घायल और हमारे अधर्म के लिए चोटिल हुआ। यशाया 53:5। परमेश्वर ने अपने बेटे में खुद को दिया कि वह भेड़ के बच्चे को वापस पाने की खुशी प्राप्त कर सकता है।
देखो, पिता ने हमें किस तरह से प्यार दिया कि हमें ईश्वर के बेटे कहा। 1 यूहन्ना 3:1। और मसीह कहता है, जैसा कि तुमने मुझे संसार में भेजा है, यहां तक कि मैंने उन्हें संसार में भेजा है। 17:18। जो कि मसीह के कष्टों के पीछे है, उसे भरने के लिए उनकी देह के लिए जो कलीसिया है। 1 कुलुसियों 1:24। प्रत्येक आत्मा जिसे मसीह ने बचाया है, उसे खोए हुए को बचाने के लिए उस नाम से भटकने के लिए कहा जाता है। इज़राइल में इस काम की उपेक्षा की गई थी। ये आज उन लोगों द्वारा उपेक्षित नहीं हैं जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। कितने भटकने वाले अपने पाठक के लिए मांग की और उसे वापस भेड़शाला मिलाया है। जब आप उन लोगों से मुड़ते हैं जो अप्रभावों और अनाकर्षक लगाने हैं, तो क्या आपको एहसास है कि आप उन आत्माओं की उपेक्षा कर रहे हैं? उनके लिए मसीह चाह रहा है। उसी समय जब आप उनकी ओर से मुड़ते हैं, वे आपकी करुणा की सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है। पूजा के लिए हर सभा में आत्माएं आराम और शांति के लिए तरसती हैं। वे लापरवाह जीवन जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे पवित्र आत्मा के प्रभाव के प्रति असंवेदनशील नहीं हैं।
उनमें से कई मसीह के लिए जीते जा सकते हैं। यदि खोई हुई भेड़ को वापस भेड़शाला में नहीं लाया जाता है तो वह तब तक भटकती है जब तक कि नष्ट नहीं हो जाती। कई आत्माओं को बचाने के लिए हाथ बढ़ाए जाने की इच्छा के लिए बर्बाद करने के लिए नीचे जाते हैं। गलतियां कठिन और लापरवाह दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर उन्हें वही फायदे मिलते हैं जो दूसरों के पास होते हैं तो वे शायद आत्मा की अधिक श्रेष्ठता और उपयोगिता के लिए अधिक प्रतिभा का खुलासा कर सकते हैं। स्वर्गदूतों को इन भटके हुए लोगों पर दया आती है। स्वर्गदूत रोते हैं जबकि मानव आंखें सूखी है और दिल दया के लिए बंद है। प्रलोभन और दुराचार के लिए गहरी आत्मा को छूने वाली सहानुभूति की कमी है। ए मसीह की आत्मा की अधिकता के लिए और स्वयं के लिए बहुत कम और बहुत कम के लिए। फरीसियों ने मसीह के दृष्टांत को उनके लिए फटकार समझा, जनता और पापियों को उनकी उपेक्षा। उसने ऐसा खुले तौर पर नहीं किया था, कहीं ऐसा न हो कि यह उनके दिल को बंद कर दे, लेकिन उनका दृष्टांत उनके सामने वही काम था जो परमेश्वर को उनके लिए आवश्यक था, जो वे करने में असफल रहे थे। अगर वे सच्चे चरवाहे होते तो इज़राइल में इन नेताओं ने एक चरवाहे का काम किया होता। उन्होंने मसीह की दया और प्रेम प्रकट किया होगा और उनके साथ उनके मिशन में एकजुट हुए होंगे। ऐसा करने से, इनकार करने से उनके धर्मनिष्ठ होने के दावे झूठे साबित हुए। अब कईयों ने मसीह की भर्त्सन को अस्वीकार कर दिया, अभी तक कुछ उनके शब्दों ने विश्वास दिलाया। इन पर स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा और खोए हुए भेड़ों के दृष्टांत में बताए गए अपने काम में अपने शिष्यों के एक साथ एकजुट हुए। चांदी का खोया हुआ सिक्का। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देने के बाद मसीह ने एक और बात करते हुए कहा, चांदी के 10 सिक्के होने वाली महिला। अगर वह एक चांदी का सिक्का खो देती है तो एक मोमबत्ती को जला सकती और घर को तब तक खोज लेती है जब तक वह उसे खोज न ले। पूर्व में गरीबों के घरों में आम तौर पर एक कमरा होता था जिसमें अक्सर खिड़की रहित और अंधेरा होता था। कमरा शायद ही कभी साफ होता था और फर्श पर गिरने वाले पैसे का टुकड़ा तेजी से धूल और गंदगी से ढका होगा। इसे ढूंढने के लिए दिन में भी मोमबत्ती से रोशन किया जाना चाहिए और घर को बड़ी लगन से झाड़ू लगानी पड़ेगी। पत्नी के विवाह वाले हिस्से में आम तौर पर पैसे के टुकड़े होते थे जिसे वह अपनी सबसे पोषित संपत्ति के रूप में अपनी बेटियों को प्रेषित करने के लिए सावधानी से रखती थी। इन सिक्कों में से एक के नुकसान को एक गंभीर आपदा माना जाएगा और इसकी वसूली से बहुत खुशी होगी जिसमें पड़ोसी महिलाएं आसानी से साझा करेंगी। जब उसे यह मिल गया था, मसीह ने कहा, वह अपने दोस्तों और उसके पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है, मेरे साथ आनंदित रहो क्योंकि मुझे वह सिक्का मिल गया है जिसे मैंने खो दिया था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग में पश्चाताप करने वाले पापी के लिए खुशियां हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा यह दृष्टांत पूर्ववर्ती की तरह उस चीज के नुकसान को निर्धारित करता है जिसे उचित खोज के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और यह बहुत खुशी के साथ। लेकिन दो दृष्टांत अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खोई हुई भेड़ जानती है कि वह खो गई है, यह चरवाहा और झुंड को छोड़ दिया है और यह खुद को ठीक नहीं कर सकता है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो महसूस करते हैं कि वे ईश्वर से अलग हो गए हैं और जो अपमान के बादल में घिरे हैं, अपमान और बुरी तरह से परीक्षा में है। खोया हुआ सिक्का उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अत्याचारों और पापों में खो गए हैं, लेकिन जिन्हें अपनी स्थिति का कोई बोध नहीं है। उन्हें परमेश्वर से अलग किया जाता है, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं उनकी आत्माएं संकट में हैं, लेकिन वे अचेतन और असंबद्ध हैं। इस दृष्टांत में मसीह सिखाता है कि यहां तक कि वे परमेश्वर के दावों के प्रति उदासीन हैं, उनके दयालु प्रेम की वस्तुएं हैं। उनसे इस बात की मांग की जाती है कि उन्हें वापस ईश्वर के पास लाया जाए। भेड़ भेड़शाला से भटक गई है, वे जंगल और पहाड़ों में खो गई थीं। घर में चांदी का सिक्का गुम हो गया था। इस दृष्टांत से परिवारों को सबक मिलता है। गृहस्थी में अपने सदस्यों के शूलों के विषय में बड़ी अशिष्टता है।
उनकी संख्या में से कोई एक हो सकता है जो ईश्वर से अलग है, लेकिन ईश्वर के सौंपे गए उपहारों पर खो जाने वाले पारिवारिक रिश्ते में कितनी चिंता महसूस की। सिक्का हालांकि धूल और मिट्टी में पड़ा हुआ है, चांदी का एक सिक्का है। इसका मालिक इसे चाहता है क्योंकि ये मूल्यवान है। इसलिए हर आत्मा जो पाप से नीचे है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। जैसे कि सिक्का शासनकाल की छवि और प्रतिलेखन को सहन करता है, इसलिए अपनी रचना में आदमी ईश्वर की छवि और प्रतिलेखन को धारण करता है। और हालांकि अब पाप के प्रभाव से प्रभावित और मंद है, इस शिलालेख के निशान हर आत्मा पर बने हुए हैं। ईश्वर उस आत्मा को पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और उस पर धर्म और पवित्रता में अपनी छवि बनाते हैं। दष्टांत की महिला अपने खोए हुए सिक्के के लिए लगन से खोज करती है। वह मोमबत्ती जलाकर घर में झाड़ू लगाती है। वह सब कुछ हटा देती है जो उसकी खोज में बाधा बन सकती है। हालांकि केवल एक सिक्का खो गया है, वह अपने प्रयासों को तब तक नहीं खोएगी जब तक कि वह सिक्का मिल नहीं जाता। इसलिए परिवार में अगर कोई सदस्य ईश्वर से हार जाता है तो उसकी आत्मा परीक्षा के लिए हर साधन का उपयोग करता है। जीवन व्यवहार को जांचने दो, देखें कि क्या कोई गलती नहीं है। प्रबंधन में कुछ त्रुटि है जिसके द्वारा उस आत्मा की पुष्टि की जाती है। अगर परिवार में एक बच्चा है जो अपनी पापी अवस्था में बेहोश है तो माता पिता आराम नहीं करते। मोमबत्ती की रोशनी करे, ईश्वर के शब्द को खोजे और उसके प्रकाश से किसी चीज को परिश्रम से जांचने दे, यह देखने के लिए कि यह बच्चा क्यों खो गया है। माता पिता को अपने स्वयं के दिलों को खोजने दे, उनकी आदतों और प्रथाओं की जांच करे। बच्चे ईश्वर की धरोहर है और हम उनकी संपत्ति के प्रबंध के लिए उनके प्रति जवाबदेह है। पिता और माता विदेशी मिशन क्षेत्र में लंबे समय तक श्रम करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मसीह लोगों के घर के बाहर काम करते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे मुक्तिदाता और उसके प्यार के लिए अजनबी हैं। मसीह के लिए अपने बच्चों को जीतने का काम कई माता पिता सेवकाई या सब्बत स्कूल के शिक्षक पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे अपने स्वयं के ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रहे हैं। अपने बच्चों को मसीही बनाने की और प्रशिक्षण सर्वोच्च सेवा थी। जो माता पिता ईश्वर के लिए अनुष्ठान करते हैं, यह एक ऐसा काम है जो रोगी परिश्रम, आजीवन परिश्रम और लगन से काम करने की मांग करता है। इस भरोसे की उपेक्षा से हम खुद को बेईमान साबित करते हैं। ऐसी उपेक्षा का कोई भी बहाना ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग उपेक्षा के दोषी हैं, वे विनाश के लिए नहीं हैं। जिस महिला का सिक्का खो गया था, उसे ढूंढने तक की जगह नहीं मिली।
इसलिए प्यार, विश्वास और प्रार्थना से माता पिता को अपने घर के काम करने दे, जब तक कि वे खुशी के साथ ईश्वर के पास ये कहते हुए नहीं आ सकते हैं, देखो मैं और वे बच्चे जिन्हें ईश्वर ने मुझे दिए हैं। यशाया 3:18। ये सच्चे गृह सेवकाई का काम है। ये उन लोगों के लिए भी उतना उपयोगी है जो इसे उन लोगों के लिए करते हैं जिनके लिए ये किया जाता है। होम सर्कल के लिए हमारे वफादार दिल से हम प्रभु के परिवार के सदस्यों के लिए काम करने के लिए खुद को फिट कर रहे हैं, जिनके साथ यदि मसीह के प्रति वफादार हैं तो अनंत युगों तक रहेंगे। मसीह ने हमारे भाई बहनों के लिए एक ही दिलचस्पी दिखाते हैं कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हम एक दूसरे के लिए हैं। और ईश्वर ने कहा कि ये सब हमें अभी अन्य के लिए श्रम करने के लिए फिट बैठता है। जैसे जैसे सहानुभूति बढ़ेगी और हमारा प्यार बढ़ेगा, हमें हर जगह एक काम करने को मिलेगा। ईश्वर का महान मानव परिवार दुनिया को गले लगाता है और सदस्यों में से किसी को भी उपेक्षा के साथ पारित नहीं जाता है। हम जहां भी हो सकते हैं, वहीं चांदी का खोया सिक्का हमारी खोज का इंतजार करता है। क्या हम इसके लिए मांग रहे हैं? दिन प्रतिदिन हम उन लोगों से मिलते हैं जो धार्मिक चीजों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। हम उनके साथ बात करते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। क्या हम उनके आध्यात्मिक कल्याण में रुचि दिखाते हैं? क्या हम मसीह को पाप मुक्ति रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं? मसीह के प्यार के साथ
हमारे अपने दिल गर्म है, क्या हम उन्हें इस बार प्यार के बारे में बताते हैं? यदि हम नहीं करते हैं तो हम इन आत्माओं से कैसे मिलेंगे अनंत काल तक, जब उनके साथ हम ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे? एक आत्मा का मूल्य कौन लगा सकता है? क्या आप इसकी कीमत जान पाएंगे? अदन की वाटिका में जा सकते हैं और वहां पीड़ा के उन घंटों के माध्यम से मसीह के साथ देखते हैं जब वहां खून की बड़ी बूंदे थी। उद्धारकर्ता को क्रूस पर उत्थान करते हुए देखे, उस घर्षणत रोने को सुन, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मरकुस 15:34। जख्मी सिर, छेद पसली की तरफ छेदा भाला और उसके पैरों को देखे। याद रखे कि सभी ने मसीह को जोखिम में डाला हमारे छुटकारे के लिए। स्वर्ग में साम्राज्य था। क्रूस के पायदान पर ये याद रखना कि एक पापी के लिए मसीह ने अपना जीवन लगा दिया होगा, आप एक आत्मा के मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप मसीह के संवाद में हैं तो आप हर इंसान पर उसका अनुमान लगाएंगे। आप दूसरों के लिए वही गहरा प्यार महसूस करेंगे जो मसीह ने आपके लिए महसूस किया है। तब जीतने में सक्षम होगे, ड्राइव करने के लिए नहीं, आकर्षित करने के लिए, और न ही पश्चाताप करने के लिए, जिनके लिए वो मर गया। यदि मसीह ने उनके लिए व्यक्तिगत प्रयास नहीं किया होता तो कोई भी कभी भी ईश्वर के पास वापस नहीं लाया जाता, और ये उस व्यक्तिगत कार्य द्वारा है कि बचाव कर सकते हैं। जब आप उन लोगों को देखते हैं जो मृत्यु के लिए नीचे जा रहे हैं तो आप शांत उदासीनता में आराम नहीं करेंगे। अधिक से अधिक पाप और हिरण और उसके दुख, अधिक बयान और निविदा वसूली के लिए आपके प्रयास होंगे। आप उन लोगों की जरूरत को जो ईश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं और अपराध के बोझ से दबे हुए हैं, आपका दिल उनके लिए सहानुभूति से भर जाएगा और आप उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाएंगे। आपके विश्वास और प्रेम की बाहों में मसीह के पास लाएंगे। आप उन्हें देखेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। आपकी सहानुभूति और आत्मविश्वास उनके दशता से गिरने के लिए कठिन बना देगा। इस काम में स्वर्ग के सभी स्वर्गदूत साथ देने के लिए तैयार हैं। स्वर्ग के सभी संसाधन उन लोगों की आज्ञा पर हैं जो खोए हुए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको सबसे लापरवाह और सबसे कठोर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब किसी को ईश्वर के पास लाया जाता है तो स्वर्ग को खुश किया जाता है। शरीफ और करूब उनकी सुनहरी वीणा को छूते हैं, और पुरुषों के बच्चों के लिए उनकी दया और प्रेम, दया के लिए ईश्वर और मेमने की प्रशंसा करते हैं।